एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद घरेलू वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि ने आर्थिक विकास में मदद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान जारी है और वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% रहा। सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में औसतन 4.18% की वृद्धि दर्ज की गई है। डॉ नागेश्वरन ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक कृषि से इतर क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग 78 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती बताता है और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह भविष्य के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में आज 2025 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा के डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए 16 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भेजे जाने वाले एथलीटों पर कुल 470 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों और खेलों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पिछले 75 साल में किसी सरकार ने नहीं उठाए। सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। 2022-23 में यह दर 3.2% रही। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद 3,000 रूपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कुछ मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन बिहार इन मापदंडों के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि भोजनालयों को परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में दाम्बूला में ग्रुप बी के मैच में मेजबान श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रन से हरा दिया। ग्रुप बी के ही एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को इसी मैदान पर 7 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 97 रन के लक्ष्य को 17 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर 100 रन बनाकर हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।